हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 8 and 9। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमधीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदम् तत्रादरः न परः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटीशयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे विवस्व मृतुमेतदेवा गोविन्द दामो दरमाधवेति। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। गजेंद्र अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान को स्तुति कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने भगवान से अत्यंत ही विनम्र प्रार्थना की है कि ये ग्राह का पाश नहीं है, ये तो काल का पाश है और मैं वास्तव में अब केवल ग्राह के पास से छूटना नहीं चाहता, मैं तो भवबंधन से छूटना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कर्म बंधन से छुड़ाकर अपने श्री चरणों में आश्रय दो और भगवान आपकी शरण प्राप्त करना, आपका पार्षद बनना ही अब मेरा गंतव्य है। श्लोक नंबर 8 and 9 में गजेंद्र अत्यंत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। वे कहते हैं न वेद यदि यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमाययाता यनुकालमिच्छति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमाययातान् यनुकालमिच्छति तस्मै नमः परीशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरूपाय नमः आचार्यकर्मणे तस्मै नमः परीशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरूपाय नमः आचार्यकर्मणे तस्मै नमः परीशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरूपाय नमः आचार्यकर्मणे। इससे पहले श्लोक नंबर 6 में गजेंद्र ने कहा, न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तु पुनः कौर अतिगन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानु क्रमण समावतु। कि जो देवता और ऋषि, जो बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी हैं, वो भी भगवान के कर्मों को, भगवान की गति को, भगवान के स्वरूप को समझ नहीं सकते हैं, तो यह साधारण मनुष्य उन भगवान के को भला कैसे समझ सकेगा, उनके विषय में कैसे जान सकता है, उनके विषय में कैसे वर्णन कर सकता है। क्योंकि भगवान तो जिस प्रकार नट कार्य करता है, वो आकर्षक वेशभूषा को धारण करता है और फिर कोई उनको पहचान नहीं सकता, उसी तरह भगवान भी बहुत गुप्त रीति से अपने कार्य करते हैं। ऐसे भगवान में मेरी रक्षा करें। और आगे उन्होंने कहा 7 में, दीर्घिक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, लेकिन फिर भी वो जो बहुत ही लालसा रखते हैं भगवान के दर्शन करने की, भगवान को देखने की, ऐसे विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवा चरन्त्य लोक व्रतम अव्रणम वने, वो बहुत भक्ति करते हैं, वन में जाकर तपस्या करते हैं और भूता तपूता सुहृद समय गति, और जो दूसरों से प्रेम करते हैं, सबके सुहृद होते हैं, ऐसे मुनि जन जिस भगवान को देखने की लालसा करते हैं समय गति में, वही भगवान मेरे गंतव्य हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गजेंद्र कहते हैं, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न विद्यते, यानी ऐसे भगवान जिनका कोई कर्म नहीं है, न विद्यते, नहीं है यस्य, जिन भगवान का जन्म कर्म वा, मतलब उनका कोई कर्म नहीं है, उनका कोई कभी जन्म नहीं होता है। यहाँ पर कर्म का मतलब क्या होता है जानते हैं? कर्म ना जो बंधन में डाले ना, कर्म का मतलब होता है वो कार्य, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कर्म की ट्रांसलेशन करते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज, है ना, जिससे आपको फल मिले। तो भगवान कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिसकी बदले में उनको बंधन में फंसना पड़े। विकर्म का मतलब होता है वह कर्म जिससे निश्चित आपको नरक मिले, है ना, और अकर्म का मतलब क्या होता है, जिससे कर्म बंधन से मुक्ति हो। अब भक्ति में अगर गौर से देखा जाए तो केवल कर्म ही कर्म है, है ना। भक्ति में सुबह से लेकर रात तक जीव भक्त को कर्म करना पड़ता है, तो क्या ये बंधन कर्म में बांधेंगे? नहीं, ये बंधन में नहीं बांधेंगे, ये कर्म जो है वो बंधन में इसलिए नहीं बांधेंगे क्योंकि ये कृष्ण कॉन्शियस में रहकर जीव करता है, लेकिन वह कार्य जो जीव कृष्ण कॉन्शियस में नहीं रहकर करता है बल्कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, तो वो अवश्य जीव के बंधन का कारण बनेंगे। तो भगवान तो अगर देखा जाए कि यहाँ पर कहा गया है ना यस्य च जन्म कर्म वा, कि भगवान का कोई कर्म नहीं है, तो भगवान इस पूरी सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, भगवान का कितना बड़ा कार्य है। परंतु ये भगवान का कार्य है, लेकिन फिर भी उनको कर्म बंधन से नहीं फंस जाता। लेकिन जिस तरह से भक्त कर्म बंधन में नहीं है, तो भला भगवान कैसे कर्म बंधन में बंधेगा। गीता में भगवान ने कह दिया कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म, कोई भी जीव एक क्षण के लिए कर्म के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन इसके साथ साथ भगवान ये भी कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वही वास्तविक ज्ञानी है। यानी कि कर्म में अकर्म को, यानी कि आप कार्य कर रहे हो लेकिन वो कार्य अकर्म है, उसका कोई बंधन नहीं बनता, वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब अर्जुन को बोल रहे भगवान कि आप युद्ध करो, और ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति, भगवान को कृष्ण कॉन्शियस में रहकर यदि जीव को मारता है तो भी वो मृत, वो फिर भी हत्यारा नहीं है। तो आप यदि कृष्ण कॉन्शियस में रहकर कार्य करते हो तो आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम कृष्ण कॉन्शियस में रहकर किसी को मारने की वजह से नहीं मारते, बल्कि अगर किसी की रक्षा करने के लिए भी हम किसी का वध करते हैं, तो भी वो हमारे कर्म बंधन बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो कर्म होते हुए भी अकर्म होता है जो कृष्ण कॉन्शियस में रहकर किया जाता है। तो इसी भगवान कहते हैं जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को, यानी कि कोई कार्य कर ही नहीं रहा है, बैठा हुआ चुप करके, लेकिन फिर भी अगर वो कर्म नहीं कर रहा है और कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो फिर उसका भी उसको बंधन लगेगा, है ना। उसको कर्म उसको करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा, छोड़। तो ऐसा भगवान यहाँ पर गजेंद्र कह रहे हैं, वे भगवान न विद्यते यस्य च जन्म, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है। परंतु हम लोग जैसे जन्मदिन मनाते हैं, भगवान का जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि उसका कभी जन्म नहीं होता है। भगवान ने भगवद गीता में कभी भी नहीं कहा कि मेरा जन्म नहीं है। भगवान ने कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म भी है मेरा कर्म भी है, परंतु वो दिव्य है। दिव्य मतलब साधारण तौर पर जीव का जन्म होता है कर्म बंधन में बंध कर, है ना। जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुसार आपको जन्म मिलता है। परंतु भगवान का जन्म कर्म बंधन में बंध कर नहीं होता, भगवान का जन्म दिव्य होता है, भगवान का कर्म भी दिव्य होता है। इसलिए भगवान के जन्म को जन्मदिन नहीं, वास्तव में अपीयरेंस डे कहा जाता है, प्रकट होते हैं भगवान। जिस प्रकार सूर्य जब रात को अस्त हो जाते हैं, तो हम कभी ये नहीं बोलते कि सूर्य की मृत्यु हो गई, सूर्य अस्त हो जाता है और सुबह सूर्य फिर से प्रकट होता है। उसी तरह भगवान भी जब अपनी लीला समाप्त करते हैं तो अपने धाम में वापस चले जाते हैं, और जब उनको पुनः लीला करनी होती है तो आते हैं। इसी को भगवान का प्राकट्य कहते हैं। वास्तव में ये भगवान का जन्म नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं गजेंद्र, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। मतलब भगवान का भौतिक जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म दिव्य होता है, भगवान के भौतिक कर्म नहीं होते जो बंधन का कारण बने, भगवान के दिव्य कर्म होते हैं। परंतु जब लोग भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को नहीं समझ पाते हैं, तो वो अपनी मंदबुद्धि के कारण भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं, कि साधारण मनुष्य है और वो इस तरह के कार्य कर रहा है कृष्ण, तो फिर है ना उनको ऐसा लगता है कि भगवान भी अपराधी, कृष्ण के दिव्यता को नहीं समझ सकते और कृष्ण को साधारण मानते हैं, तो कर्म जो भगवान ने किए हैं उन कर्मों को भी बहुत साधारण मानते हैं, साधारण दृष्टि से देखते हैं, तो ये बहुत हीन भावना है। इसलिए इससे बेहतर ये है कि वो भगवान को ये माने कि उसका कर्म है ही नहीं, उसका जन्म है ही नहीं, भले उसको निराकार माने, ये फिर भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि एक भगवान का फेस निराकार भी है। लेकिन जो भगवान को साधारण मानते हैं वो बहुत हीन भावना है। तो इसलिए शास्त्र भी कह देता है कि क्योंकि साधारण प्राणी भगवान की दिव्यता को नहीं समझ सकते, तो भले ही वो ये सोचे न नाम रूपे गुण दोष एववा, कि उसका न नाम है, न रूप है, न गुण है, न दोष है, उसका कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि भगवान का कोई नाम नहीं है, तो फिर इतने सारे आचार्यगण, सब संत कैसे बोलते हैं भगवान का नाम लो, भगवान के नाम लेने से हमारे सारे अपराध क्षय हो जाते हैं। तो अवश्य भगवान का नाम है, परंतु हम हमारी तरह ये साधारण नाम नहीं है। हम जीवों का नाम कैसे होता है? जब हम प्रकट होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, उसके अनुसार हमको एक नाम मिल जाता है। लेकिन फिर जैसे मृत्यु होती है तो वो नाम कहीं अलोप हो जाता है। किसी को अपने पुराने जन्म के नाम के विषय में पता भी नहीं होगा। लेकिन भगवान का नाम इटर्नल है। भगवान जिस भी रूप में आते हैं, भले कोई भी भगवान का नाम होता है, वो इटर्नल होता है। भगवान परिस्थिति के अनुसार रूप धारण करते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं है। जैसे गर्ग आचार्य जब भगवान श्री कृष्ण के नामकरण के लिए आए थे, तब उन्होंने बताया था साफ साफ कि ये वो हैं जिनके असंख्य नाम हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं। वैसे तो साधारण प्राणी के भी अगर इस जन्म में देखा जाए तो 2-3-4-5 नाम तो होते ही हैं, क्योंकि उसके बच्चे उसको मम्मी डैडी बुलाते हैं, और जो उनकी माता पिता हैं वो किसी और नाम से बुलाते हैं, उसकी पत्नी किसी और नाम से बुलाती है, उसकी जो फ्रेंड सर्कल होता है वो किसी और। तो इस तरह से तो एक जन्म में तो कई नाम होते हैं एक जीव के, परंतु वो नाम प्राकृतिक है। जब तक जीव प्राकृतिक इस प्रकृति में होता है तो उसका वो नाम होता है, लेकिन जब वो क्षय हो जाता है तो वो केवल आत्मा रह जाता, उसका कोई नाम नहीं रहता। जिस प्रकार मतलब जो सिचुएशन चेंज होती है उसकी उसी अनुसार इसका नाम हो जाता है। जैसे एक लकड़ी का टेबल होता है, तो जब वो टेबल की शेप में है तो उसका नाम टेबल है, लेकिन उससे पहले जब वो वृक्ष था, लकड़ी वृक्ष में थी, तो उसका नाम केवल वृक्ष था। फिर जब टेबल भी खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो वो केवल ईंधन बन जाता है, फैक्ट्रीज में काम आता है या किस तरह। तो मतलब जब स्थिति चेंज हो जाती है तो नाम चेंज हो जाता है, परंतु भगवान का नाम, भगवान के नाम वो कंटिन्यूस रहते हैं, वो कभी भी वो उनका क्षय नहीं होता। दिव्य नाम होते हैं भगवान के, और भगवान का रूप भी दिव्य होता है। जैसे भगवान भले किसी भी रूप में आए, भगवान का रूप भी दिव्य होता है, चाहे वो किसी पशु का स्वरूप क्यों न धारण करे। जैसे भगवान ने धरती माता की रक्षा करने के लिए, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का अवतार लिया, तो भगवान वराह देव हो गए। परंतु ऐसा नहीं है कि भगवान का यह रूप अभी भी वराह लोक भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस लोक में भगवान अभी भी वो सुअर की योनि में है और ढूंढ रहे हैं पृथ्वी को। नहीं, उस लोक में भगवान विष्णु के रूप में है, और जब नरसिंहदेव जब हिरण्यकश्यप को मारना था तो उसके लिए सिचुएशन ऐसी थी कि भगवान को आधा शरीर नर का और आधा सिंह का लेना पड़ा। और नरसिंह लोक में ऐसा नहीं है कि भगवान अभी तक उसी भयानक स्वरूप में है। भगवान वहां पर भी विष्णु, जितने भी लोक हैं उसमें भगवान अपने इटर्नल विष्णु स्वरूप में ही है। सिर्फ अस्त्र, चैतन्य महाप्रभु बताते अस्त्र भेद के अनुसार भगवान का अलग अलग नाम होता है। अस्त्र भेद मतलब जैसे शंख चक्र गदा पद्म होता है भगवान का, तो जैसे अगर वराह होता है तो उसके ये उनका भेद हो जाता है कि किसी हाथ में शंख होता है, किसी में कमल होता है, और वो इस तरह से चेंज हो जाते हैं, तो फिर वो भगवान का स्वरूप भी चेंज हो जाता है। लेकिन संसार में जब भगवान आते हैं तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन भगवान चाहे जो भी स्वरूप धारण करें, जो भी नाम हो भगवान का, वो सब दिव्य होते हैं। तो इसीलिए गजेंद्र कह रहे हैं न नाम रूपे गुण दोष एववा कि उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, यानी कोई प्राकृतिक नहीं है, उनके सब दिव्य हैं। गुण दोष एववा, अगर देखा जाए तो भगवान में करोड़ों गुण हैं, भगवान के गुणों की गणना करना संभव नहीं, लेकिन यहाँ पर कहा कि उनका कोई गुण नहीं है और उनका कोई दोष। अगर दोष भगवान में वैसे तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर दोष की बात की जाए तो जैसे प्रलय होता है तो प्रलय में सबका विनाश कर देते हैं भगवान देव, और जब सृष्टि का विनाश होता है उसमें देवता भी नष्ट हो जाते हैं, ब्राह्मण भी नष्ट हो जाते हैं, गौ भी नष्ट हो जाते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं सबका नाश हो जाता है। लेकिन वो दोष इसलिए नहीं है क्योंकि वो भगवान का एक लीला है भगवान की। जैसे साधारण दृष्टि में अगर हम देखें तो अग्नि का स्वभाव क्या है, जलाना। तो यदि मंदिर में भी हम कभी दिया रखते हैं, कभी ऐसा होता है तो अग्नि मंदिर को भी जला देती है, है ना, कभी गलत तरीके से रखा जाता है और अग्नि के अंदर चाहे चंदन डालो, चाहे मल मूत्र डालो, जो भी डालो वो जलकर भस्म हो जाता है, खा जाती है अग्नि सबको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि अब दोषी हो गई, उसने मंदिर के किसी कर्टन को जला दिया या कुछ हो गया, अग्नि को दोष नहीं लगेगा। उसी प्रकार अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य सारी सृष्टि को सूर्य प्रकाश देता है, न जाने कितना मल मूत्र सुखाता है, परंतु उसका उसको दोष नहीं लगता कि ये खराब हो गया, अब सूरज इसने ये गंदा काम किया, ये खराब हो गया, या अग्नि ने ये गलत कार्य किया तो अग्नि देवता को मतलब दोष लगेगा। तो जब इनको पाप नहीं लगता तो भला भगवान को, भगवान के कर्म ये जो बंधन में कैसे डाल सकते हैं, भगवान जब लय करते हैं या प्रलय होता है तो ये सारे भगवान के कार्य हैं, गुण और दोष हैं भगवान के, गुण अनेकों भगवान के गुण हैं, लेकिन ये सब दिव्य हैं। तो ये गजेंद्र इसी तरह से बता रहे हैं कि न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोका व्यय संभवाय यः, लेकिन फिर भी ये जो दृष्टि जगत है उसके प्राकट्य और संहार के समय, उस समय के अनुसार भगवान कार्य करते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, उनका कोई नाम होता है, स्वरूप होता है, वो सब स्वीकार करते हैं। और वो सब कैसे है, स्वमायातान यनुकालमृच्छति। स्वमायाया, स्वमायाया का मतलब होता है अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा। जब तथापि लोका व्यय संभवाय, जब लोक में भगवान की भक्त होते हैं उनके ऊपर कोई कष्ट होता है, दृष्टि जगत में भगवान को आना होता है, तो अपनी माया के अनुसार, हम जब संसार में पैदा होते हैं तो अपनी माया से पैदा नहीं होते हैं, है ना, हमें अगर किसी माता पिता को स्वीकार, कोई भी बच्चा अपनी माता पिता को अपनी मर्जी से स्वीकार नहीं करता, और पैदा होते ही अपने माता पिता को ये नहीं बताता कि मैं आपके यहाँ पर किस लिए आया हूँ। जैसे भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान बताते हैं अपने माता पिता को, क्योंकि आपने पिछले जन्म में मेरी घोर तपस्या की थी और मुझे पुत्र स्वरूप में प्राप्त करने के लिए आपने तपस्या की थी, इसलिए मैं आपका पुत्र बना हूं। तो इस तरह से हम कभी भी नहीं, जो विवश होते हैं हम कर्म बंधन, जो माता पिता मिलते हैं हम उसे स्वीकार, जैसा शरीर हमें मिलता है उसे स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन भगवान का जो शरीर हम खुद चॉइस करते हैं, भगवान को पता होता है कि अभी यदि मुझे हिरण्यकश्यप को मारना है तो मुझे नरसिंह शरीर चाहिए होगा, अगर मुझे महाराज बलि से तीन पग धरती लेनी है तो मुझे एक छोटे से वामन भगवान का अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान अपनी माया से सारे रूप धारण करते हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, जो भी भगवान करते हैं वो सब अपनी माया से ही स्वरूप धारण करते हैं, और ये पूरे जगत को भी भगवान अपनी माया से भ्रमा रहे हैं। मतलब गजेंद्र कह रहे हैं कि यह भौतिक जगत है ना, ये तथापि लोकाप ये संभव आए, ये भौतिक जगत भगवान, इसमें भगवान समय के अनुसार अपनी माया शक्ति से प्रकट होते हैं, अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं, वो उनकी अपनी माया शक्ति है, लेकिन भगवान वास्तव में न उनका कोई जन्म है जो प्राकृतिक होता है, भौतिक कोई जन्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, नाम नहीं है, गुण नहीं है, दोष नहीं है, ये सब भगवान की माया के द्वारा केवल भगवान अपनी लीला कर रहे होते हैं। ऐसे भगवान को तस्मै नमः परेशाय। मैं ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, तस्मै नमः, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। ब्रह्मणे, वो ब्रह्म है, ब्रह्म है मतलब वो निराकार है और अनंत शक्त है। अनंत शक्त है मतलब उनके बहुत सारे रूप हैं। अब देखो यहाँ पर आगे है, अरूपाय अरूपाय मतलब उसका कोई स्वरूप नहीं है, और उरुरूपाय मतलब बहुत सारे रूप हैं, है ना, उरुरूपाय। तो ब्रह्मणे का साथ अरूपाय लगा हुआ है, अनंत शक्तय के साथ उरुरूपाय लगा हुआ है। लेकिन साधारण व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाते, वो केवल ये देखते हैं तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्त, कि वो ब्रह्म है, अनंत शक्ति वाले हैं और उनका कोई रूप नहीं है। उरु रूपाय पर ध्यान नहीं जाता उनका। लेकिन यहाँ गजेंद्र अत्यंत सुंदर रीति से बता रहे हैं कि वैसे तो उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उनके असंख्य स्वरूप हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे असंख्य रूप हैं, नाम हैं, गुण हैं, दोष, मतलब ऐसे कार्य हैं जिनको कोई साधारण बुद्धि से समझ नहीं सकता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे लोग के सामने खुद को प्रकट ही नहीं करता हूँ। ना हम प्रकाश सर्वत्र योग माया समन्वता मूढ़ोयम ना भी जानाती लोको माम अचम अव्ययम। मैं समस्त जीवों के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, केवल जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वो ही मुझे समझ सकते हैं। वैसे तो मैं अपनी योग माया द्वारा प्रच्छन्न रहता हूँ, कोई मुझे समझ नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर गजेंद्र बहुत ही सुंदर बता रहे तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये, कि मैं उस ब्रह्म को जो अनंत शक्ति वाले हैं उनको प्रणाम करता हूँ। अरूपायोरूपाय, वैसे तो उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है लेकिन असंख्य रूप हैं। नमः, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आश्चर्य कर्म, वो उनके जो कर्म होते हैं वो बहुत ज्यादा आश्चर्यमय होते हैं। अब ये आश्चर्य जो है वो सबके साथ लगेगा, है ना, उनके कर्म आश्चर्य है, उनका जन्म आश्चर्यमय है, उनके रूप आश्चर्यमय है, उनके गुण आश्चर्यमय है, वो स्वयं आश्चर्यमय। आश्चर्य का क्या मतलब होता है, कि वो चकित कर देने वाला आश्चर्यमय कर्म करते हैं भगवान। यदि देखा जाए तो भगवान का एक एक कार्य कितना आश्चर्यमय है। जब भगवान हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं तो उसके लिए उनको कोई शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इसी हिरण्यकश्यपु के साथ जब इंद्र का युद्ध होता है तो इंद्र का जो वज्र है वो बहुत ही भयानक है, लेकिन वो उसकी छाती पर एक छोटा सा आघात भी नहीं कर सका और भगवान ने उसे नखों से चीर दिया। ये भी नहीं, भगवान ने जोर भी नहीं लगाया, बस ऐसे, वहाँ भागवतम में लिखा है जिस प्रकार चटाई बनाने वाला चटाई की लकड़ी को धीरे से पकड़ता है और चिढ़ जाती है, वो पूरा टूट जाती है, उसी तरह से हिरण्यकश्यप की छाती को भगवान, उस समय भगवान क्रोध में थे, क्रोध की मुद्रा में थे, वो तो था, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान को बहुत जोर लगाना पड़ा हो उसकी छाती को तोड़ने के लिए या चीरने के लिए। तो भगवान के कार्य इतने आश्चर्यमय, कभी कश्यप बन जाते हैं इतने बड़े कश्यप, और उनकी पीठ पर जब मद्राचल पर्वत, शास्त्र कहता है कि वो मद्राचल पर्वत जो है वो नीचे से इतना नोकीला था, इतना ज्यादा नोकीला, और वो भगवान की पीठ पे रख के उसको रगड़ा जा रहा है, रगड़ रहे हैं उसको, मंथन कर रहे हैं, और वो जब पर्वत हिल रहा है तो भगवान को नींद आ रही है, नींद आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है कोई रुई से उनकी पीठ को खुजला रहा है, उनको ऐसा सॉफ्ट। तो ऐसे कि कोई साधारण व्यक्ति के ऐसे कार्य नहीं होते हैं। अगर किसी साधारण कोई भी व्यक्ति हो या देव हो, उसके पीठ पर पत्थर रख के उसको रगड़ा जाए तो क्या उसको नींद आएगी, उसको सुकून आएगा? नहीं, भगवान के कार्य आश्चर्यचकित करने वाले हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान के स्वरूप जो है वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान की समस्त लीलाएं वो सब आश्चर्यमय है। इसलिए गजेंद्र कह रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनके ये आश्चर्यमय कर्म किसी को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके ये साधारण जन्म नहीं है, साधारण कर्म नहीं है, उनका साधारण स्वरूप नहीं है। ऐसे भगवान की शरण में आया हूँ और मैं ऐसे भगवान से सुरक्षा की याचना कर रहा हूँ। अनुवाद देखिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित है, यानी भगवान का कोई भी भौतिक जन नहीं, कार्य नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, दोष नहीं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता है उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदृश रूपों में आते हैं, यानी तथापि लोकाप्यय संभवाय यह कि वो लोक में जिस प्रकार से प्रकट और संजन करना पड़ता है, सो माया ताननु काल मृच्छति कि वो उस अपनी माया से उस समय के अनुसार स्वरूप धारण करते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक क्लमश से सर्वथा मुक्त होकर उद्भूत कर्म करते हैं, बहुत अद्भुत कर्म करते हैं। नमः आश्चर्य कर्मणि, भौतिक शक्ति भौतिक क्लमश से सर्वथा मुक्त होते हैं। वो उनके कार्य ऐसे नहीं होते हैं कि उनको बंधन में बांधे, उनके कार्य अद्भुत होते हैं। अतएव वे परब्रह्म हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विष्णु पुराण में कहा गया है, गुणाश्च दोषाश्च मुने व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मको ही, कि गुणाश्च दोषाश्च मुने व्यतीत कि भगवान के ना तो भौतिक रूप में भगवान के ना तो भौतिक रूप होते हैं ना भौतिक गुण या दोष होते हैं। समस्त कल्याण गुणात्मक हो ही कि वो सब आध्यात्मिक हैं और समस्त आध्यात्मिक गुणों से एकाग्र एकमात्र आधार है। भगवान सब कुछ जो भी कार्य करते हैं उनके नाम रूप गुण सब आध्यात्मिक होते। भगवान ने भगवद गीता 4.8 में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, भक्तों को बचाने तथा असुरों को संहार करने के लिए भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की ही तरह फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक स्थान होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भक्त सीधे वैकुंठ जाकर भगवान की का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्मलोक को जाता है जो भगवान का निर्विशेष तेज है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक स्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता है। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि भगवान के साथ जिसका भी संपर्क हो जाता है उसे सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। ये अलग बात होती है क्योंकि भक्तों को भगवान का सानिध्य चाहिए होता है, इसलिए वो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। परंतु जो असुर होते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनको भगवान के सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान के तेज में वो लीन हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहते। तो इसलिए लेकिन फिर भी उनका भी क्योंकि संपर्क भगवान से हो जाता है तो भगवान उन्हें भी मुक्त कर देते हैं और उनको भी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है। तो भगवान के द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता। भौतिक जगत में किसी का भी वध किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भगवान का जो कार्य है वो आध्यात्मिक होता है। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वो निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते। निर्गुण का मतलब होता है जिस पर प्रकृति के तीनों गुण जो है वो असर नहीं करते। ये भगवान जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है, इसे भगवान को निर्गुण कहा जाता है। उनका नाम भौतिक नहीं होता है, अन्यथा कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके मुक्ति कैसे पा सकता है। अब यहाँ पर लिखा है न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोषः। अगर भगवान का कोई नाम होता ही नहीं तो फिर हम जपते कैसे और मुक्ति कैसे प्राप्त करते। भगवान का नाम है परंतु वो भौतिक नहीं है, इसे गजेंद्र कह रहे हैं न नाम रूपे। तो यहाँ शीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगर भगवान का नाम नहीं होता और या भौतिक होता तो फिर हम उसको जप करके मुक्ति कैसे प्राप्त करते थे। राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। भगवान के नाम नहीं, ऐसा नहीं, भगवान के असंख्य नाम है और भगवान ने इन समस्त नामों में अपनी समस्त शक्तियां एकत्रित कर दी हैं। भगवान में अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इस तरह हरे कृष्ण महामंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवंत उदाहरण है अजामिल, जो नारायण नाम जपने मात्र से अपने कार्य कलापों से सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ यह सही उतरता है तो भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है। जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसे बताया कि तो भगवान जब इस संसार में आते हैं तो ऐसा नहीं है जिस तरह हम पदार्थ से उत्पन्न होते हैं या दूसरी वस्तुएं होती हैं, वैसे नहीं होता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जन्म कर्म चमे दिव्यम अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान के जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, लेकिन जो मूढ़ होते हैं, बेवकूफ होते हैं, वो भगवान के इस परम भाव को नहीं समझ सकते। इसे श्रील प्रभुपाद जी बताएं, अतएव जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करने हेतु भगवान राम या कृष्ण अवतरित होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सामान्य मनुष्य न माने। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को सामान्य समझना जीव का सबसे बड़ा अपराध है। भगवान को सामान्य नहीं समझना चाहिए, भगवान दिव्य हैं, भगवान के कार्य दिव्य हैं। तो जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं संभवामि आत्मा मायाया, कि वो अपनी शक्ति के द्वारा इस संसार में अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। क्योंकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते हैं, अतएव वे सदैव दिव्य होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान को सामान्य व्यक्ति ना माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि इस संसार में जब भगवान आते हैं तो ऐसा नहीं है कि साधारण व्यक्ति की तरह नाम रूप और गुण और दोष या कर्मों से बंधन में बंध जाते हैं। वो अपनी अंतरंग शक्ति से कार्य करते हैं और भगवान का इसीलिए गजेंद्र ने बताया कि न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा, कि उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई कभी जन्म नहीं होता। जन्म तो भगवान ने कह दिया, आत्मा का भी नहीं होता है। भगवान ने बताया भगवद गीता में
न जायते मिर्यते वा कदाचिन्नायं मुत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर न जायते मिर्यते वा कदाचिन। ना तो कभी उसका जन्म होता है और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। जब भगवान का एक छोटा सा अंश है आत्मा, उसका भी कभी जन्म नहीं होता है, उसका भी कभी मृत्यु नहीं होती है। और भगवान ने साफ साफ कहा नायम भूत्वा भविता वानभूय, न अभी हुआ है न पहले हुआ था और न ही कभी होगा। तो जब आत्मा का ही जन्म नहीं होता है तो फिर किसका होता है? तो भगवान ने कहा न हन्यते हन्य माने शरीर, जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। जब आत्मा इतना दिव्य है तो भगवान की क्या बात की जाए। भगवान के जो भी जन्म होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सब आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन वो सब हमें इसलिए समझ में नहीं आते क्योंकि अभी तक हम भौतिक माया से ढके हुए। एक तो हमारे ऊपर माया का पर्दा है, ऊपर से भगवान ने अपने ऊपर भी माया का पर्दा चढ़ा दिया। भगवान ने कहा कि मैं माया के द्वारा ढका हुआ होता हूँ। भगवान अपनी योग माया के द्वारा ढके हुए होते हैं और हमारे ऊपर महामाया का पर्दा होता है। इससे हम भगवान को सही से समझ नहीं पाते हैं। और भगवान को समझने का केवल एक ही तरीका है। भगवान बताते हैं 10.10 में कि यदि तुमको मुझे समझना है तो तुम अपनी बुद्धि को उसको यूज मत करो। भगवान ने कहा तुम्हारी ये जो भौतिक बुद्धि है ना, वो केवल भौतिक वस्तुओं को समझ सकती, आध्यात्मिक वस्तुओं को नहीं समझ सकती। इसलिए तुम्हारी बुद्धि को बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम्, तुम्हें कंटिन्यूअस प्रेम के साथ मेरे नाम का भजन करना होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा? ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांतिते, मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य बुद्धि प्रदान करूंगा जिससे तुम मुझे समझ सकोगे। वरना तुम्हारी इस भौतिक बुद्धि से भले तुम कितने ही जन्म ले लो, मुझे समझ नहीं सकोगे। तो आज गजेंद्र को भगवान ने वो बुद्धि दी है जिससे वो भगवान को समझकर भगवान की शरण में आए हैं। तो हम सबको भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमें भी अपनी शरण में लें और हमें भी ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे हम भगवान के दिव्य नाम रूप जन कर्म और गुणों को समझ सकें। एक बार शुरू से सारे श्लोक पढ़ते हैं ताकि हमारा रिपीट हो जाए। श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं आविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तस्मात् तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभो न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तु पुनः को हतिगन्तुमीर्हितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानु क्रमण समावतु निद्रेक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनय सुसाधव चरन्त्यलोक व्रतमाव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समेगति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय स्वमाययातान् यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आचार्यकर्मणे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।